नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, स्ट्रीमिंग, शेयरिंग, स्टीलिंग, बिग डेटा एंड द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट। माइकल डी स्मिथ और राहुल तिलंग की विश्लेषणात्मक व्यावसायिक पुस्तक है। यह संगीत, फिल्म, टेलीविजन और प्रकाशन जैसे रचनात्मक उद्योगों में डिजिटल तकनीक के प्रभाव को आर्थिक तर्क और उपलब्ध आंकड़ों के सहारे समझती है। पुस्तक का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि इंटरनेट ने पुराने कारोबारों को बदला, बल्कि यह दिखाना है कि स्थापित कंपनियों ने अक्सर उपभोक्ता व्यवहार के प्रमाणों के बजाय पुरानी धारणाओं पर निर्णय लेकर अपनी स्थिति कमजोर की। लेखक नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल और अन्य डिजिटल मध्यस्थ मंचों के उदाहरणों से उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण और कॉपीराइट प्रवर्तन के बदलते नियमों की पड़ताल करते हैं। इसका केंद्रीय आग्रह है कि मनोरंजन कंपनियों को अनुमान आधारित निर्णयों की जगह ग्राहक आंकड़ों का व्यवस्थित उपयोग करना चाहिए। साथ ही पुस्तक डिजिटल पायरेसी के आर्थिक नुकसान, वैध उपलब्धता की भूमिका और मंचों की बढ़ती शक्ति पर भी ध्यान देती है। इसलिए यह तकनीकी परिवर्तन का उत्सव मात्र नहीं, बल्कि डेटा, प्रतिस्पर्धा और रचनात्मक निवेश के संबंधों का व्यावहारिक अध्ययन है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डेटा आधारित निर्णय ने पारंपरिक मनोरंजन अनुमान को चुनौती दी। पुस्तक का प्रमुख तर्क यह है कि पुराने मनोरंजन उद्योग लंबे समय तक सीमित वितरण, महंगे उत्पादन और नियंत्रित प्रचार पर टिके रहे। रिकॉर्ड लेबल, स्टूडियो और प्रकाशक यह तय करते थे कि किस सामग्री को दर्शकों तक पहुंचना है। ऐसी व्यवस्था में अधिकारियों के अनुभव और सहज अनुमान को पर्याप्त माना जाता था। क्योंकि प्रतिस्पर्धी विकल्प कम थे और ग्राहक व्यवहार को बारीकी से मापना कठिन था, डिजिटल माध्यम ने इस स्थिति को बदल लिया। ऑनलाइन खोज, देखना, सुनना, खरीदना और छोड़ देना, सभी गतिविधियां ऐसे संकेत बन गईं जिनसे मांग का अधिक ठोस अनुमान संभव हुआ। स्मिथ और तेलंग के अनुसार समस्या केवल तकनीकी बदलाव ना समझ पाने की नहीं थी, अधिक गंभीर समस्या यह थी कि कई स्थापित कंपनियों ने उपलब्ध आंकड़ों को निर्णय की केंद्रीय भाषा नहीं बनाया। वे पुराने नियमों जैसे सितारों, सीमित शेल्फ स्थान या पारंपरिक रिलीज क्रम को बिना पर्याप्त परीक्षण के लागू करती रहे। इसके विपरीत डिजिटल मंच उपयोगकर्ताओं की पसंद, समान रुचियों और भुगतान व्यवहार को जोड़कर सामग्री तथा प्रेषकों को बेहतर ढंग से मिलाते हैं। पुस्तक डेटा को रचनात्मकता का विकल्प नहीं बताती, उसका व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि रचनात्मक जोखिम को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बेहतर सूचना से समझदार बनाया जा सकता है। किस दर्शक के लिए कौन सी सामग्री बने, उसे किस रूप में दिया जाए और उसकी कीमत क्या हो, इन प्रश्नों पर प्रमाण आधारित निर्णय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन सकते हैं। दूसरा, नेटफ्लिक्स मॉडल में दर्शक व्यवहार से सामग्री चयन और वितरण। नेटफ्लिक्स का हाउस ऑफ कार्ड्स उदाहरण पुस्तक के लिए इस बदलाव का स्पष्ट प्रतीक है। पारंपरिक नेटवर्क टेलीविजन में सामान्य क्रम पायलट बनाना, सीमित एपिसोड स्वीकृत करना और साप्ताहिक प्रसारण के दौरान दर्शक प्रतिक्रिया देखना था। इसमें निर्णयकर्ता पहले सामग्री चुनते थे और बाजार बाद में प्रतिक्रिया देता था। नेटफ्लिक्स ने अपने ग्राहकों के देखने के इतिहास और रुचि संकेतों का उपयोग करके कार्यक्रम की संभावित मांग का अनुमान लगाया। उसने पायलट पर निर्भर रहने के बजाय दो सीजन का आदेश दिया और एपिसोड एक साथ उपलब्ध कराए। इस उदाहरण का महत्व केवल किसी एक सफल श्रृंखला में नहीं है, यह बताता है कि वितरण की पद्धति स्वयं उत्पाद अनुभव को बदलती है। जब दर्शक अपनी सुविधा के समय अपनी पसंद के उपकरण पर और लगातार कई एपिसोड देख सकते हैं, तब साप्ताहिक प्रसारण, निश्चित समय और एक ही स्क्रीन की पुरानी धारणाएं कमजोर पड़ती हैं। मंच के पास इस नए व्यवहार का प्रत्यक्ष डेटा भी होता है, इसलिए वह सामग्री चयन, सिफारिश और ग्राहक बनाए रखने के निर्णयों को एक साथ जोड़ सकता है। लेखक इस तरह की क्षमता को मनोरंजन उद्योग के लिए चेतावनी और अवसर दोनों के रूप में रखते हैं। डेटा से मिली जानकारी तब अधिक उपयोगी होती है जब उसे उत्पादन, विपणन और वितरण विभागों के बीच साझा किया जाए। केवल दर्शक संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है, कंपनियों को यह समझना होता है कि कौन देख रहा है, किस क्रम में देख रहा है, किस सामग्री के बाद देख रहा है और किस कारण सेवा छोड़ सकता है। यही संबंध डेटा को रणनीति में बदलता है। तीसरा, लॉन्ग टेल, उत्पाद विविधता और अलग अलग कीमतों की आर्थिक चुनौती। डिजिटल वितरण ने मनोरंजन वस्तुओं की आर्थिक संरचना को बदल दिया, क्योंकि ऑनलाइन सूची में जगह की भौतिक सीमा बहुत कम हो जाती है। दुकान के शेल्फ, सिनेमाघर के शो और रेडियो समय की कमी पहले कुछ चुनिंदा लोकप्रिय उत्पादों को प्राथमिकता देती थी। डिजिटल मंच अपेक्षाकृत छोटे दर्शक वर्गों वाली सामग्री को भी खोजने योग्य और उपलब्ध बना सकते हैं। इसे अक्सर लॉन्ग टेल की संभावना से जोड़ा जाता है, लेकिन पुस्तक का संकेत यह है कि अधिक विकल्प अपने आप बेहतर बाजार नहीं बनाते। ग्राहकों को विकल्पों के बीच सही सामग्री तक पहुंचाने के लिए खोज, सिफारिश और विश्वसनीय सूचना आवश्यक है। यही उत्पाद भेदकरण और मूल्य भेदकरण का प्रश्न आता है। सभी ग्राहक एक ही सामग्री, एक ही समय और एक ही सुविधा के लिए समान भुगतान नहीं करना चाहते। कोई व्यक्ति तत्काल पहुंच के लिए अधिक दे सकता है, जबकि दूसरा कम कीमत पर देर से उपलब्ध सामग्री स्वीकार करेगा। कोई विज्ञापन सहित सेवा चुन सकता है तो कोई बिना बाधा वाला विकल्प। लेखकों की चर्चा में कीमत केवल रकम नहीं बल्कि पहुंच के समय, चैनल और उपयोग की शर्तों से जुड़ा निर्णय है। ऐसी रणनीति लागू करना सरल नहीं है। अलग चैनलों और समयों के अनुसार मूल्य निर्धारण से प्रबंधन जटिल होता है और ग्राहकों को अनुचितता का अनुभव भी हो सकता है। फिर भी पुस्तक बताती है कि एक समान मूल्य और एक समान रिलीज मॉडल डिजिटल बाजार की विविध मांग को अनदेखा कर सकते हैं। उपयोगी लक्ष्य अधिकतम कीमत वसूलना नहीं बल्कि विभिन्न ग्राहक समूहों के लिए स्पष्ट और व्यवहार्य मूल्य प्रस्ताव बनाना है। चौथा, पायरेसी से कानूनी बिक्री। निवेश और वैध उपलब्धता का संबंध शीर्षक में स्टीलिंग शब्द होने के बावजूद पुस्तक पायरेसी को नैतिक नारे के रूप में नहीं आर्थिक प्रभाव के प्रश्न के रूप में देखती है। लेखकों द्वारा प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष है कि अवैध उपलब्धता कानूनी बिक्री और निर्माताओं की संभावित आय को नुकसान पहुंचाती है। यह तर्क महत्वपूर्ण है क्योंकि कम आय का प्रभाव केवल किसी मौजूदा शीर्षक तक सीमित नहीं रहता। यदि अपेक्षित प्रतिफल घटता है तो निर्माता कुछ परियोजनाओं, खासकर जोखिमपूर्ण या छोटे दर्शक वर्ग वाली परियोजनाओं में निवेश कम कर सकते हैं। पुस्तक उस लोकप्रिय दावे पर भी संदेह रखती है कि पायरेसी हमेशा प्रचार पैदा करती है और अंततः बिक्री बढ़ा देती है। चर्चा के अनुसार, चर्चा या पहचान से मिलने वाला संभावित लाभ सामान्यतः खोई हुई भुगतान इच्छा की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसलिए पायरेसी को केवल मुफ्त मार्केटिंग कह देना आर्थिक प्रमाणों के साथ न्याय नहीं करता। फिर भी लेखकों का दृष्टिकोण केवल दंड और मुकदमेबाजी तक सीमित नहीं है। वे संकेत देते हैं कि अवैध स्रोतों की मांग घटाने में वैध सामग्री की सुविधाजनक, समय पर और पर्याप्त उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। पायरेट साइटों को अवरुद्ध करने के उपाय पूर्ण न होने पर भी कुछ प्रभाव डाल सकते हैं, पर उपभोक्ता को बेहतर वैध विकल्प देना उतना ही आवश्यक है। यह संतुलित निष्कर्ष है। कॉपीराइट सुरक्षा का उद्देश्य नियंत्रण मात्र नहीं बल्कि ऐसा बाजार बनाना है जिसमें रचनाकारों को निवेश का आधार मिले और दर्शकों को उपयोग में आसान कानूनी पहुंच। अंत में मंच शक्ति के सामने डेटा संगठन, ब्रांड और प्रतिस्पर्धी रणनीति, पुस्तक के व्यापक निष्कर्ष में डिजिटल मंच केवल नए वितरक नहीं है, वे ग्राहक संबंध, खोज, भुगतान, सिफारिश और उपयोग संबंधी जानकारी को एक ही ढांचे में जोड़ते हैं। इस कारण अमेज़न, एप्पल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसे मध्यस्थों की शक्ति पुराने सामग्री मालिकों से अलग प्रकार की है। वे यह जान सकते हैं कि उपयोगकर्ता किस चीज में रुचि रखता है, उसे क्या सुझाना है और उसे सेवा से कैसे जोड़े रखना है। सामग्री कंपनियों के लिए चुनौती यह है कि वे दर्शक से दूरी बढ़ने न दें। स्मिथ और तेलंग कंपनियों को डेटा विश्लेषण को अलग थलग तकनीकी कार्य न मानने का संकेत देते हैं। उपयोगी व्यवस्था में डेटा को संगठन के भीतर केंद्रीकृत किया जाता है और जहां उचित हो निर्णय लेने वाले भागीदारों तक पहुंचाया जाता है। इसका अर्थ हर निर्णय को एल्गोरिदम पर छोड़ना नहीं बल्कि विपणन, सामग्री, मूल्य निर्धारण और वितरण को एक साझा प्रमाण आधार पर लाना है। लेखक सामग्री और ब्रांड के बीच मजबूत संबंध बनाने की आवश्यकता पर भी बल देते हैं ताकि ग्राहक केवल किसी मंच की सुविधा से नहीं, सामग्री प्रदाता की पहचान और भरोसे से भी जुड़े। प्रतिस्पर्धी मंच बनाना कठिन है क्योंकि मौजूदा मंचों के पास उपयोगकर्ता आदतें, सूचना का लाभ, व्यापक संग्रह और तकनीकी निवेश का लाभ होता है। इसलिए पुस्तक आसान समाधान नहीं देती। उसका उपयोगी संदेश यह है कि कंपनियों को पहले अपनी ग्राहक जानकारी, विशिष्ट सामग्री और वितरण साझेदारियों का यथार्थ मूल्यांकन करना चाहिए। सफल प्रतिक्रिया केवल पुरानी खिड़की व्यवस्था बचाना नहीं बल्कि डेटा समर्थित और ग्राहक केंद्रित क्षमता बनाना है। निष्कर्ष में स्ट्रीमिंग, शेयरिंग, स्टीलिंग उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो मीडिया, डिजिटल रणनीति, प्लेटफॉर्म अर्थशास्त्र या डेटा आधारित प्रबंधन को मनोरंजन उद्योग के ठोस संदर्भ में समझना चाहते हैं, फिल्म, संगीत, प्रकाशन और टेलीविजन के प्रबंधक, MBA विद्यार्थी, नीति और कॉपीराइट पर काम करने वाले लोग तथा डिजिटल उत्पादों में रुचि रखने वाले पाठक इससे व्यावहारिक ढांचा प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक का लाभ यह है कि यह तकनीकी बदलाव को केवल नई कंपनियों की सफलता गाथा नहीं बनाती, यह पूछती है कि ग्राहक डेटा किस तरह पुराने अनुमान को परखता है, कीमत और उपलब्धता मांग को कैसे बदलते हैं और पायरेसी का प्रभाव रचनात्मक निवेश तक क्यों पहुंचता है। इसी वजह से यह सामान्य डिजिटल व्यवधान वाली पुस्तकों से अलग दिखती है। इसकी भाषा प्रबंधन उन्मुख है, लेकिन तर्कों के पीछे अनुभवजन्य शोध और आर्थिक सोच रखने का प्रयास है। नेटफ्लिक्स जैसे उदाहरण इसे सुलभ बनाते हैं, जबकि लॉन्ग टेल, मूल्य भेदकरण और मंच शक्ति जैसे विचार इसे सतही भविष्यवाणी बनने से बचाते हैं। पाठक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक विज्ञापन आधारित डिजिटल प्रतिस्पर्धा को केंद्र में नहीं रखती और भविष्य संबंधी कुछ संगठनात्मक सुझाव बहस योग्य हो सकते हैं। फिर भी इसकी स्थायी उपयोगिता इसी में है कि यह एक सरल अनुशासन सिखाती है, दावों को ग्राहक व्यवहार और मापे जा सकने वाले परिणामों के सामने जांचना। मनोरंजन के बदलते बाजार को समझने के लिए यह डेटा, व्यवसाय मॉडल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के बीच एक स्पष्ट सेतु प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं माइकल डी स्मिथ, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।